दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कान पकड़कर सॉरी बोलना चाहूँगा तीसरी कहानी को इतनी देरी से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। वो क्या है ना, कोरोना काल में मेरे माँ बापा ने मेरा घर से ज़्यादा बाहर निकलना वर्जित किया हुआ था, तो मेरा अपने चहेते चाय के ठेले पर आना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। आज बड़ी ही मुश्किल से मीटिंग का हवाला दिए घर से बाहर निकला हूँ। तो अब जब इतना कुछ किया है तो सोचा आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। कहीं ना कहीं इस कहानी के कुछ अंश आपके और मेरे बचपन से ही तो जुड़े हैं। तो गौर से सुनिएगा मेरी आज की कहानी, टीलू और नाना नानी। ये कहानी है सन 1995 में दिल्ली में रहने वाले टीलू की। ये तब की बात है जब टीलू 7 साल का गोल मटोल बालक था, दुनियादारी से अनजान और हर लालच से दूर, बस अपनी ही धुन में सवार रहता था। टीलू महाशय अपने माँ बाबा की आँख का तारा तो थे, लेकिन जब भी शाम को खेलने निकलते मानो पूरे मोहल्ले की नज़रें इस गोल मटोल लड्डू जैसे टीलू को देखकर फूली ना समाती। उसके चेहरे की चमक और मासूमियत देखकर सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती। टीलू महाशय के दो ही शौक थे, चुपके से माँ के हाथ की बनी सारी सब्जी खा जाना और दूसरा रोज शाम आइसक्रीम वाले भाई की रेडी से 5 रुपये वाली ऑरेंज बार खाना। और पता है क्या, महाशय का एक तीसरा शौक भी था, हर दशहरे की छुट्टी में अपने नानी के घर पानीपत जाना। मई 1995 की दशहरे की छुट्टियों की बात है। जैसे ही स्कूल से छुट्टियों का सर्कुलर आया, टीलू ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी नानी के घर चलो ना। माँ भी टीलू की प्यार भरी जिद के आगे कुछ कह ना पाई और आने वाले 10 दिन की छुट्टियाँ बिताने टीलू महाशय अपनी माँ के संग ननिहाल चल दिए। टीलू के लिए उसके नाना नानी का घर अपने घर से कम ना था। उसके नाना नानी उसके दूसरे माँ बाबा की तरह थे। टीलू ना सिर्फ अपने माँ बाबा का बल्कि अपने नाना नानी की आंखों का भी तारा था। जब भी टीलू नानी के घर जाता, नानी पहले से ही उसके चहीते पकवान तैयार करके रखती थी। आखिरकार नानी को भी पता था उनके लाडले नाती के पेट में पल दो पल चूहे जो उछल कूद मचाते हैं। दिल्ली से पानीपत हरियाणा रोडवेज के झटकों भरा सफ़र पूरा कर जब टीलू नानी के घर पहुंचा, तो सबसे पहले वो दौड़ कर अपने नाना जी से लिपट गया और कहा, डैडी देखो मैं आ गया, अब जल्दी से मुझे 5 रुपये की खर्ची दो ना। टीलू की मासूमियत भरी जिद देखकर नाना जी खुद को रोक ना पाए और उसको प्यार से गले लगा लिया और कहा, अरे टीलू 5 क्या, तू 10 रुपये ले मेरे लाल। ये सुनकर टीलू की आंखें चमक उठी और उसने अपने नाना जी को जोरों से गले लगा लिया। अभी बस नाना जी ने टीलू को गोद से उतारा ही था कि पीछे से एकदम से कोई आया और उससे कहा, मेरा राजा बेटा आ गया। और ये सुनते ही टीलू खिलखिला के चिल्लाया और कहा, नानी, और भागकर अपनी चहेती नानी से जा लिपटा। टीलू मानो जब भी नानी के घर जाता पूरा घर खुशियों की किलकारियों से खिल उठता। और क्यों भी ना हो, आखिरकार सबका लाडला जो था, अब क्या था। रोज सुबह टीलू महाशय को रजाई से उनके नाना जी उठाते और उठते ही हमारे लाडले की पहली ख्वाहिश होती नानी के हाथ के पराठे। टीलू मुंह से बाद में कहता, उससे पहले ही नानी उसके चहीते दाल के पराठे सफ़ेद मक्खन से लाद कर अपने हाथों से उसे खिलाती। पराठे खाते खाते ही महाशय जी अपने नाना जी के संग गौशाला जाते, कौओं को आटा खिलाते और डोलू भर दूध भरवा कर घर ले आते। राते ही नानी अपने लाडले को नमकीन लस्सी का गिलास पिलाती और फिर टीलू महाशय को प्रतिदिन उसके मामा ठंडे ठंडे पानी से नहलाते। माना टीलू हमारा खाने का शौकीन था, लेकिन हर दोपहर टीलू अपनी नानी से रामायण सुने बिना उनकी नाक में दम कर देता था। और जैसे ही कहानी ख़त्म होती हमारे छोटू राम के पेट में मानो चूहे फिर से दौड़ लगाते। और ये देख नानी तुरंत अपने लाडले के लिए उसकी चहेती पनीर की भुर्जी और देसी घी की बनी चूरी ले आती और बस उसको प्यार और उदार भरी आंखों से देखकर मन मन मुस्कुराती। जैसे ही शाम होती नाना जी दुकान से घर वापस आते, सबसे पहले उसको बाजार में आलू की टिक्की खिलाकर सीधा उसे मेले में रामलीला दिखाने ले जाते। टीलू और नाना नानी का प्यार एकदम निर्मल, सुनहरा और मासूम सा था, मानो नाना नानी को एक नन्ना सा गुड्डा मिल जाता जिसके संग दोनों हंसते खेलते अपनी छुट्टियां बिताते। पर कहते हैं ना, हर कहानी में खुशियां सीमित रहती हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरा, टीलू अपनी उम्र में आगे बढ़ता रहा, पहले 12वीं, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग, फिर MBA और उसके बाद कॉरपोरेट की नौकरी। मानो जिंदगी की जिम्मेदारियों में उसका बचपन और उसके नाना नानी कहीं खो से गए थे। हालांकि ऐसा नहीं था वे उनसे प्यार नहीं करता था, पर अपनी जिम्मेदारियों के आगे चाह कर भी उन्हें मिल ना पाता। वहीं दूसरी ओर जिन नाना नानी के संग वो हर छुट्टियों में खेला और घूमा, वो आज भी टीलू के फ़ोन का हर दिन इंतज़ार करते। पता नहीं कैसे पर कॉर्पोरेट की चकाचौंध में अपने बुजुर्गों से मीलों दूर चला गया था टीलू। आज टीलू के पास उसके बटुए में हजारों रुपए होते हैं, लेकिन नाना जी की 5 रुपए की खर्ची की कीमत शायद उन हजारों रुपयों से बढ़कर थी। आज टीलू शायद महंगे से महंगे होटल में खाना खाता था, लेकिन नानी के हाथ की चूरी और मक्खन का स्वाद दुनिया में उसे कहीं नहीं मिलता था। आज शायद महंगे से महंगे थिएटर या स्टैंड अप तो वो देखा करता था, लेकिन हर दोपहर एक लम्हे के लिए उसकी नानी की कहानी उसके कानों में ज़रूर गूंजती थी। आज टीलू के पास एक लंबी सी गाड़ी थी, पर इस साल भी नाना जी का हाथ पकड़े रामलीला देखने जाने का उसे मौका ना मिल पाया था। वहीं दूसरी ओर अब नाना नानी भी बूढ़े हो चुके थे। शायद जो नाना पहले उसे गोद में उठा लेते थे, अब उम्र के बोझ से उनकी पीठ थोड़ी झुक सी गई थी। वो नानी जो पहले दौड़कर उसे गले लगाती थी, आज उसके कदम की गति काफ़ी धीमी पड़ चुकी थी। पर पता है क्या, आज भी जब टीलू ने नाना नानी को महीनों बाद फ़ोन किया तो उन दोनों ने उससे एक ही सवाल किया, राजा बेटा तू कब मिलने आएगा। बस यही थी आज की कहानी। और इस कहानी के अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये कहानी आपको सच में पसंद आई तो इस दशहरे वक्त निकाल कर उन नाना नानी या दादा दादी को फ़ोन लगाएं जिनके संग आपने अपना पूरा बचपन बिताया है। क्योंकि अंग्रेजी के एक बहुत ही मशहूर पंडित ने कहा है, अ ग्रैंड पेरेंट्स लव विल नेवर ग्रो ओल्ड। शुक्रिया।